ये आकाशवाणी दिल्ली है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में एक बड़े नार्को नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी अधिकारियों को नवरात्रि पर विशेष रूप से सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने 2015 से 2025 के बीच बिजली आपूर्ति के नाम पर केवल घोटाला किया है। सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कल से लागू हो जाएगी। राजधानी दिल्ली में आज ईद उल फित्र का पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में एक बड़े नार्को नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। सोशल मीडिया में श्री शाह ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने गिरोह से 27 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थ बरामद किए हैं। टीम ने 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें नाइजीरिया के प्रभावशाली परिवार से संबंधित 4 अफ्रीकी नागरिक भी शामिल हैं। श्री शाह ने इस बड़ी उपलब्धता के लिए एनसीबी और दिल्ली पुलिस की सराहना की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मादक पदार्थ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और सरकार लगातार इसके खिलाफ अभियान चला रही है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि ये गिरोह अफ्रीकी युवाओं को मादक पदार्थों की तस्करी में मदद करता था। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के साथ साथ पंजाब के प्रमुख निजी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए छात्र वीजा प्राप्त करने में मदद करता था। जांच में पता चला है कि कुछ छात्रों के लिए वीजा केवल भारत में रहने के लिए एक आवरण था, जबकि वे मादक पदार्थ की आपूर्ति और क्रिप्टो रूपांतरण में शामिल थे। मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कोई भी नागरिक मानस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1933 पर कॉल करके नशीले पदार्थों की बिक्री से संबंधित जानकारी साझा कर सकता है। दिल्ली पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 2 ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से 548 ग्राम हीरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए है। ये आरोपी दिल्ली स्थित सुल्तानपुरी के रहने वाले हैं और वे दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स की आपूर्ति करते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 1 दशक में पूरे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाकर देश के स्वास्थ्य ढांचे का स्तर ऊंचा किया है। गृहमंत्री हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने नवनिर्मित गहन चिकित्सा कक्ष का उद्घाटन भी किया और स्नातकोत्तर छात्रावास की आधारशिला भी रखी।
मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने 64,000 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसके लिए खर्च कर एक बहुत बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक खाका बनाने का 730 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाए गए, 4382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए गए और 602 क्रिटिकल केयर बॉक्स 10 साल के अंदर नए निर्मित किए गए।
श्री शाह ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में की गई कई पहलों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। श्री शाह ने कहा कि गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए गए हैं, जिससे 20 करोड़ लोगों को आश्रय मिला है। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय उपलब्ध कराने के बारे में भी बताया।
4 करोड़ आवास बनाए मतलब 20 करोड़ लोगों को छत देने का काम, 81 करोड़ लोगों को प्रतिवाह प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुक्त, 11 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा देकर धुआं मुक्त घर बनाने का काम किया, 12 करोड़ परिवार इस देश में 2014 तक शौचालय विहीन थे, और आज के देश में सबसे पहले हर घर को शौचालय देने वाली सरकार हमारी हरियाणा सरकार बनी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नवरात्रि के दूसरे दिन रोहिणी स्थित काली माता मंदिर का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नवरात्रि पर विशेष रूप से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे धार्मिक स्थलों के आसपास सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखें।
माँ काली का आशीर्वाद दिल्ली और दिल्ली वासियों पे बना रहे और लगातार दिल्ली प्रगति की राह पे बढ़ती रहे, यही मंशा मैंने माँ के चरणों में रखी है। हम सब ने दिल्ली सरकार की ओर से नवरात्रों पे विशेष रूप से सफाई अभियान का आयोजन किया है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी धार्मिक स्थलों के आसपास सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखें।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2015 से 2025 के बीच बिजली आपूर्ति के नाम पर केवल घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने निजी कंपनियों के साथ मिलकर बिजली सब्सिडी और परचेज एडजस्टमेंट शुल्क घोटाले किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जिस शानदार पावर सप्लाई का दावा कर रही हैं, उसकी नींव दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के दौरान 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में दिल्ली का बजट पेश करते हुए रखी थी। श्री सचदेवा ने कहा कि श्री जेटली ने बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट पर जोर देते हुए नए विद्युत प्लांट लगाने और बिजली ट्रांसफार्मर तथा तारों के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया था। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि संत नगर और श्याम नगर एक्सटेंशन में अनुमानित लागत 30 लाख रुपए से नई पानी की पाइपलाइन डाली जाएगी। इसके अलावा विष्णु गार्डन और टीसी कैंप में अनुमानित लागत 82 लाख रुपए से सीवर लाइन का नवीनीकरण किया जाएगा। श्री सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जन कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त अश्विनी कुमार ने आज सभी संस्थानों को मच्छर जनित बीमारियों से बचाव और नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, व्यवसायिक केंद्रों, व्यापार संघों और RWA के प्रमुखों को इस संबंध में एक परामर्श जारी किया। निगमायुक्त ने सभी संस्थानों के प्रमुखों को अपने संस्थान में मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है। श्री कुमार ने कार्यस्थलों पर मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए निगम के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन बीमारियों का कोई उपचार और टीका नहीं है, इसलिए डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया के बचाव और नियंत्रण के लिए स्रोत पर एडिस मच्छरों का प्रजनन समाप्त करना एकमात्र उपाय है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि वे टंकियों को ढककर रखें, कूलर को सप्ताह में एक बार साफ करें और बर्तनों, बोतलों, गमलों और टायरों में पानी जमा न होने दें। उन्होंने सभी DBC कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे छत के ऊपर रखी टंकी की भी जांच करें। नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि जिस संस्थान के परिसर में मच्छरों का प्रजनन मिलेगा, वहां के अधिकारी और जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र जनकपुरी में मुख्य सीवर लाइन बदलने के कार्य की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस सीवर लाइन के खराब होने के कारण यहां के आसपास के क्षेत्र में गंदे पानी का ओवरफ्लो हो रहा था। श्री सूद ने कहा कि इस सीवर लाइन का काम एक महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए इस क्षेत्र के साथ साथ जनकपुरी क्षेत्र की सभी सीवर लाइन की जांच की जा रही है। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना UPS कल से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने UPS को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में UPS के संचालन के लिए नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 3 समूहों से संबंधित है। प्रथम समूह में 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में एनपीसी के अंतर्गत कार्यरत केंद्र सरकार का कर्मचारी शामिल है। दूसरी श्रेणी में 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार में नए भर्ती हुए लोग शामिल है। तीसरी श्रेणी में एनपीएस का हिस्सा रहा केंद्र सरकार का कर्मचारी 31 मार्च या उससे पहले सेवानिवृत्त हुआ, चाहे वे नियमित सेवानिवृत्त हों या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, वे यूपीएस के लिए पात्र हैं। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। यूपीएस उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं, साथ ही जो भविष्य में शामिल होंगे उनके पास एनपीएस से यूपीएस में जाने का विकल्प है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने में मिले औसत बेसिक सैलरी की 50% राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। यूपीएस में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन की गारंटी मिलती है और इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य है। इसके अलावा पेंशन धारक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन के रूप में अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा। इस योजना के लिए कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए दिल्ली से दीपेंद्र कुमार।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी में आज ईद उल फित्र का पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में नमाज अदा की गई। ईद को रमजान के महीने की समाप्ति का भी प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी लोगों को ईद उल फित्र की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पावन पर्व सभी के जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि लेकर आए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी लोगों को ईद उल फित्र की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और शांति लेकर आए। दिल्ली विधानसभा और नेहरू युवा केंद्र संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के अलावा विधानसभा के सदस्य डॉ. अनिल गोयल, रवीन्द्र सिंह नेगी और रविकांत विशिष्ट मौजूद रहे। इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं के नेतृत्व विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये युवा संसद मंच युवाओं को अपने विचार प्रस्तुत करने, नेतृत्व कौशल विकसित करने और लोकतंत्र को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।
युवा संसद में दिल्ली के विभिन्न जिलों से चयनित 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये प्रतिभागी जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए थे। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सार्थक अरोड़ा को पहला स्थान, लावण्या कार्की को दूसरा स्थान और दिव्यांशी पांडा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इन सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा जो दिल्ली स्थित संसद परिसर में आयोजित होगी। इस युवा संसद का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व कौशल, नागरिक सहभागिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ को विकसित करना है। प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद कुमार।
रजनीगंधा अचीवर्स ने आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप का खिताब जीत लिया है। नई दिल्ली में कल रजनीगंधा अचीवर्स ने फाइनल में जिंदल पैंथर को संघर्षपूर्ण मुकाबले में हराया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। राजधानी में आज दिन में तेज धूप खिली रही जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में एक बड़े नार्को नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी अधिकारियों को नवरात्रि पर विशेष रूप से सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने 2015 से 2025 के बीच बिजली आपूर्ति के नाम पर केवल घोटाला किया। सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कल से लागू हो जाएगी। राजधानी दिल्ली में आज ईद उल फित्र का पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।